ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण से चौथा स्कंद अध्याय 28। इस अध्याय का नाम है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति और श्लोक संख्या 17। 16 लिखे हैं तो आपको बताया नहीं 17 लिखने के लिए। किसने बोला? मैं इसको बोला था कि 17 लिखने का। लिखो बाद में। एनीवे मैं 17 क्योंकि 16 में कुछ है नहीं तो 16 17 दोनों एक साथ है। धर्मात्मक मैं बोला था, पता नहीं कम सुनता है लगता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग अपना हाथ अपने बीड़ी में रखे हैं ना उन निकाल दीजिए वहाँ से एक बार, क्यों कथा सुनने का मतलब होता है सुनना और नाम जप करने का मतलब होता है सुनना, एक साथ में दो चीज नहीं होगा। और अपने मोबाइल को साइलेंस पर रख लें, दो चीज कर लेंगे आप लोग तब तक से श्लोक लिख लेते हैं। तो यह जो प्रसंग है पुरंजन का प्रसंग, नारद मुनि महाराज प्राचीन परिषद को उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हम लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं। उदाहरण से बहुत चीजें आसानी से समझ में आ जाती है। ऐसे उदाहरण जो हमारे जीवन में डे टू डे काम के हों तो वैसा ही उदाहरण यहाँ पर नारद जी प्राचीन परिषद को बतलाए हैं और वह है पुरंजन उपाख्यान, पुरंजन का उपाख्यान।
कितना देर और लगेगा?
5 मिनट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग खड़ा क्यों हो दरवाजे पर? अंदर आ जाओ। अहमेति स्वीकृत्य, अहम एति स्वीकृत्य, गृहेषु कुमति गृहि, गृहेषु कुमति गृहि, दध्यौ प्रमदयादिनो, दध्यौ प्रमदयादिनो, विप्रयोगा उपस्थिति, विप्रयोगा उपस्थिति, अहम् ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमति गृहे दध्यौ प्रमदयादीनो विप्रयोगा उपस्थिति, अहम् ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमति गृहे दध्यौ प्रमदयादीनो,
ठीक है,
दध्यौ प्रमदयादीनो विप्रयोग उपस्थिति। दध्यौ माता जी, माता जी लोग अहम् मैं ममा मेरा इति इस प्रकार स्वीकृत्या स्वीकार करके गृहेषु घर में कुमति ही दुर्बुद्धि गृही गृहस्थ दध्यौ ध्यान दिया प्रमदया अपनी पत्नी सहित दीना अत्यंत निर्धन विप्रयोगे जब वियोग उपस्थिते आ उपस्थित हुआ। आप लोग थोड़ा आगे आ जाएंगे, जो लेट कमर्स लोग हैं थोड़ा देर से आ रहे हैं। तो इसके पहले का जो श्लोक है, दुहित्री पुत्र पौतांश जामिता पार्षदान स्वत्वावशिष्ट यत् किंचित् गृहकोश परिच्छदन अहम् ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमति गृहे दध्यौ प्रमदयादीनो विप्रयोगा उपस्थिते। इसका अनुवाद तात्पर्य भक्तिविदान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। तब राजा पुरंजन अपनी पुत्रियों पुत्रों पौत्रों पुत्रवधुओं जमाता नौकरों तथा अन्य पार्षदों के साथ अपने घर घर के सारे साज सामान तथा जो कुछ भी संचित धन था उन सब के विषय में सोचने लगा। राजा पुरंजन अपने परिवार के प्रति तथा मैं और मेरा विचार में अत्यधिक आसक्त था। चूंकि वह अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक मोहित था इसलिए वह पहले से ही दीन बन चुका था। वियोग के समय वह अत्यंत दुखी हो गया। तात्पर्य, इस श्लोक से स्पष्ट है कि मरते समय भौतिक सुख के विचार कहीं नहीं जाते। यह सूचित करता है कि जीवात्मा सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि तथा अहंकार द्वारा ले जाया जाता है। अहंकार के कारण जीव अब भी भौतिक सुख भोगना चाहता है और उसको न भोग पाने से वह दुखी हो जाता है। वह अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए बौद्धिक योजना बनाता है और स्थूल शरीर त्यागने पर भी वह सूक्ष्म शरीर द्वारा दूसरे स्थूल शरीर में ले जाया जाता है। सूक्ष्म शरीर का देहांतरण इस भौतिक आंखों से नहीं दिखता, अतः जब मनुष्य स्थूल देह छोड़ता है तो वह सोचते हैं कि वह मर गया। सूक्ष्म शरीर भौतिक सुख की योजना बनाता है, अस्थूल शरीर तो उनको भोगने का साधन मात्र है। इस प्रकार इस स्थूल देह की उपमा पत्नी से दी गई है, क्योंकि पत्नी ही वह साधन है जो इंद्रिय तृप्ति की सारी सामग्री प्रस्तुत करती है। स्थूल शरीर से दीर्घकालीन संगति के कारण जीव को इससे बिछुड़ते हुए दुख होता है। जीव की मानसिक क्रियाशीलता उसे दूसरा स्थूल शरीर धारण करने के लिए बाध्य करती है। स्त्री संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अस्त्र है, जिसका अर्थ है विस्तार। स्त्री के माध्यम से ही मनुष्य पुत्र पुत्रियां पौत्र इत्यादि के रूप में अपना विस्तार करता है। मृत्यु के समय परिवार के सदस्यों के प्रति अनुराग प्रखर हो जाता है। प्रायः देखा जाता है कि मृत्यु के निकट आने पर मनुष्य अपने प्रिय पुत्र को बुलाकर उस पर अपनी पत्नी तथा अन्य साज समाज की रक्षा का भार डाल देता है और कहता है, बेटे मैं जाने को बाध्य हूं, तुम परिवार की देखभाल करना। वह अपने गंतव्य को न जानते हुए भी इस प्रकार कहता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्निर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर इस श्लोक में संसारिक व्यक्तियों के गतिविधियों का वर्णन किया गया है। संसार में सब लोग पुरंजन ही हैं। पुर मतलब यह देह, जो देह में आनंद का अनुभूति करते हैं, देहानंद की अनुभूति करते हैं, वे सब पुरंजन लोग ही हैं। मृत्यु के समय, मृत्यु का समय बड़ा दुखदाई होता है और मृत्यु के समय के पहले का समय भी बड़ा दुखदाई होता है। मानव जीवन हम लोगों को मिला हुआ है, मानव जीवन का एक लक्ष्य है। मानव जीवन केवल खाने सोने बाल बच्चा पैदा करने और अपना रक्षा करने के लिए नहीं है। भगवान ऋषभदेव स्पष्ट कहते हैं, नायम देहो देह भाजा निर्लोके कांस्तान कामात अरहते विड्भुजाम जे। ये खाने पीने के लिए नहीं है बल्कि कुछ विशेष कार्य करने के लिए है, और वह विशेष कार्य है अपने घर वापिस लौटना। प्रभुपाद जी कहते हैं, बैक होम बैक टू गॉड हेड। ये मनुष्य देह ही एकमात्र वह साधन है जिससे हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। संसार में सब लोग मरने वाले हैं। कोई यहां पर है जो जीने के लिए आया हुआ है? हाथ उठाओ। तो कोई जीने वाला है? जो सो रहा है उसको जगा दो। सब मरने वाले हैं तो सो मत, चले रहो। तो मरना तो है, ये तो बात सही है, अब उससे पहले क्या करें? परीक्षित महाराज का यही प्रश्न था कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न होकर के बतलाए हैं कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कहते हैं कि बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है, मरियाने सते प्रश्नों कृतो लोक हिते नृपा, आपने जन कल्याण संबंधी ये प्रश्न किया है, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर देना जब प्रारंभ करते हैं तो वे कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरोपी ईश्वरो हरि श्रोतव्य कृतव्यश्च ध्येय अस्मरस्ते नित्यदा, ऐसे कुछ कहते हैं कि जो मानव जन्म लिया है उसे चाहिए कि भगवान के नाम का कीर्तन करे, भगवान का कथा सुने, भगवान का चिंतन करे, यही मानव जन्म की सफलता है। जन्म लाभ परापुंसः अंतः नारायण स्मृति, मानव जन्म प्राप्त करने की पराकाष्ठा इसी में सीमित है कि हम जीवन के अंत में नारायण का स्मरण कर लें, यही परीक्षा है। साल भर पढ़ाई करने का मतलब है परीक्षा में पास करना, और परीक्षा में फर्स्ट क्लास से पास करना। तो वैसे ही मानव जीवन प्राप्त कर करके जो असली परीक्षा है मृत्यु, उसमें पास करना, ये कोई खिलवाड़ नहीं है, ये बड़ा सीरियस मैटर है। जो भी मानव देह प्राप्त किया है उसे सीरियसली सोचना चाहिए कि जीवन के अंत में नारायण का स्मरण करना है तो क्या हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं बुढ़ापे में भजन करना चाहिए, ये कभी संभव नहीं है, बुढ़ापे में भजन नहीं हो सकता है। ठीक वैसे ही वो मूर्ख बालक के समान कहता है परीक्षा जब आएगा तो एक हफ्ता पहले पढ़ना शुरू करेंगे, साल भर क्या करेगा, खेलेगा है? वैसे काम नहीं चलेगा। हमें चाहिए कि बचपन से ही, जैसा कि प्रहलाद जी कहते हैं कौमार आचरित प्राग्नो, बचपन से ही कृष्ण भावना का आचरण प्रारंभ करना चाहिए और तब अंत में नारायण स्मृति होगी, यही मानव जीवन की सफलता है, यही मनुष्य का लक्ष्य है। लेकिन आज हमारी परिस्थिति क्या है, पुरंजन की परिस्थिति है। तो वर्तमान परिस्थिति का यहां पर इन श्लोकों में वर्णन किया गया है। और जो व्यक्ति जीवन भर लगा रहता है केवल घर गृहस्थी में, पुत्र परिवार इत्यादि में, वह जीवन के अंत समय नहीं चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकता है, उसे उन्हीं वस्तुओं की याद आएगी जिनका वो भरण पोषण किया है अपने आनंद के लिए या जिस काम के लिए भी। तो यहां पर इस श्लोक में वर्णन किया गया है इन श्लोकों में कि किस प्रकार से व्यक्ति मरने वाला जब होता है तो चाहता है कि जितने घर परिवार वाले हैं सब आ जाएं, सबका एक बार अंतिम बार मुंह देख लूं। ये लोग कहते हैं अंतिम बार मुंह देख लूं, अब तो जाने वाला हूं अंतिम बार देख लूं। जिसका मुंह देखना चाहिए वो नहीं देखना चाहता है, चाहिए कृष्ण का मुंह देखना, लेकिन चाहता है कि घर परिवार वालों का मुंह देखना चाहता है अंतिम बार। तो पुरंजन भी अंतिम बार मुख देखना चाहता था, सब परिवार वालों को बुला करके अब कार्य सौंप रहा है। आजकल लोग विल लिखते हैं, अंतिम इच्छा लिखते हैं। तो अहम ममेति सुकृत्यः गृहेषु कुमति गृही, जो घर गृहस्थी में फंसा रहता है हमेशा, यहां पर एक तरह से सुखदेव गोस्वामी ने गाली दिए हैं, कहते हैं मूर्ख व्यक्ति है कुमति गृही, उसकी मति मारी गई है। जो घर गृहस्थी में फंसा हुआ है पत्नी पुत्र परिवार आदि में, वह व्यक्ति कुमती है, उसकी बुद्धि मारी गई है। हम लोग बार बार सुनते हैं इस बात को, लेकिन हम लोगों पर असर नहीं पड़ता है। हम लोगों का चमड़ा बहुत मोटा हो गया है, बिल्कुल असर नहीं पड़ता है। प्रभुपाद जी कितने बार कहते हैं कि हम लोग देह नहीं है, आत्मा है, लेकिन समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक वैसे ही भागवतम गाली दे दे करके समझाता है लोगों को, फिर भी पता नहीं चलता है। ऐसा बात नहीं कि माला जब करना शुरू करे तो हम लोग इसे परे हो गए हैं। हम लोग भी इसी क्लास में हैं। हम लोग कहते हमारे लिए नहीं, उस बाहर जो बीड़ी पीते हैं उनके लिए है। नहीं, हम लोगों के लिए भी है। एक कुमती गृही जो घर गृहस्थी में रचा पचा है, जिसके जीवन का केंद्र बिंदु पत्नी पुत्र परिवार है, वो सब वही है। गृहेषु कुमती गृही दद्धौ प्रमदया दीनो, प्राण जब निकलने लगता है तो दीन के समान होता है। विप्रयोग उपस्थित, बड़ा सुंदर शब्द है विप्रयोग। प्रयोग मतलब जिसको यूज किया है, जिसको अपने जीवन में पत्नी पुत्र प्रयाग पुत्र परिवार इति, और विप्रयोग उनसे जब विलग होने लगता है उपस्थित, जब वह उपस्थिति आ जाती है, किसकी उपस्थिति, विप्रयोग की, उनसे छूटने की, यानी मृत्यु की परिस्थिति जब आ जाती है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्तियों को एक घर गृहस्थी में ज्यादा फंसना नहीं चाहिए, घर गृहस्थी में ज्यादा फंसना नहीं चाहिए, नहीं तो अंत में इन्हीं की स्मृति बनी रहेगी। घर गृहस्थी में फंसे रहेंगे तो यही परिस्थिति बनी रहेगी। अरे हम तो भागवत महापुराण में भगवान श्री राम भी दर्शाए हैं उदाहरण के द्वारा कि घर गृहस्थी कितना खतरनाक है। जब सीता जी का चोरी हो गया, रावण चोरी कर लेकर चला गया, तो भगवान राम जंगल में भटक रहे थे, वृक्षों से पूछ रहे थे, पशु पक्षियों से पूछ रहे थे। एक समान गृहमेधी के समान व्यवहार कर रहे थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भ्रात्रा बने कृपणवत प्रेया वियुक्त स्त्री संगी नाम गतीति प्रथयम चचार। कहते भ्रात्रा बने कृपणवत, अपने भाई लक्ष्मण के साथ कृपणवत, एक मूर्ख गृहमेधी के समान, कुमति गृह, वो घर गृहस्थी वाले के समान जिसका बुद्धि नष्ट हो जाती है, प्रेया विमुक्त, अपनी प्रेयसी श्रीमती सीता देवी से अलग होने के चलते भटक रहे थे। और आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, स्त्री संगिनाम गति इति, जो पत्नी पुत्र परिवार में फंसा रहता है, लगा रहता है, उसकी यही गति होती है, भटकना पड़ता है, दुख होता है। भगवान श्री राम एक प्रकार से एग्जाम्पल सेट किए हैं हम लोगों के लिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जब भी कहीं अच्छा काम में, जैसे वृंदावन जाना हो या भजन करने जाना हो, तो अकेला जाना चाहिए, पुत्र परिवार लेकर के नहीं जाना चाहिए। मैं जानता हूं कुछ लोग कहेंगे, महाराज आप गलत बात कर रहे हो, पति पत्नी साथ में धर्म काम में जाना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं, अकेले जाओ तो अच्छा है। हम लोग देखे हैं कितने लोग आते हैं वृंदावन, पूरा परिवार लेकर के आते हैं, पत्नी को लाते हैं, बच्चों को लाते हैं, और इतना भीड़ भड़ाका होता है, जब कुंभ मेला में जाते हैं, वो बच्चा गुम गया कहीं पर, अब देखिए उनका तीर्थयात्रा कैसा रहा। तीर्थयात्रा होगा, भगवान का स्मरण होगा, भगवान का स्मरण नहीं होगा, वो बच्चा का स्मरण होगा, पत्नी का स्मरण होगा। गए तो थे तीर्थयात्रा करने, भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं हुआ। बड़ा रिस्की जीवन है, इसलिए प्रभुपाद जी सावधान किए हैं। तात्पर्य में कहते हैं, गृहे नारीम विवर्जेता, स्त्री को घर में ही छोड़कर जाना चाहिए, वो भी भजन करे आप भी भजन करो शांति से, वो स्मरण करती रहे कि हमारे पति वृंदावन गए हैं और आप यहाँ पर भजन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। आसक्त गृहस्थों को एडवाइस दिया गया, भगवान राम इसमें दो चीज किए हैं, दो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, एक तो विप्रलम्ब भाव दिखाए हैं और दूसरा संसारियों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि भजन कीर्तन अकेला करना चाहिए, हम आए हैं अकेला और जाएंगे अकेला, इसलिए भजन करो अकेला, नहीं तो घर गृहस्थी में रह करके संभव नहीं है। तो कुमति गृही, घर गृहस्थी वाला कुमति गृही है। और प्रश्न उठता है कि अब तो हो गया है, अब तो शादी विवाह हो गया, घर गृहस्थी हो गया, अब क्या करना चाहिए, वेयर डू यू गो फ्रॉम हियर, अब क्या करें। पहले कोई कथा कहा होता तो शायद शादी नहीं किए होते, अब तो शादी कर लिए हैं, घर गृहस्थी हो गया, अब क्या करें, और भी कोई देर नहीं हुआ है तो क्या करना चाहिए, यह बात बतलाए हैं युधिष्ठिर महाराज से नारद जी। जब वर्णाश्रम धर्म का निरूपण नारद जी कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज से, तो युधिष्ठिर महाराज सुन रहे थे लेकिन कुछ सोच रहे थे, तो नारद जी ने कहा क्या बात है महाराज, जो मैं कहीं अटपट तो कोई खराब तो बात नहीं कह दिया ना, आपका मन नहीं लग रहा है, क्या बात है, आप क्या सोच रहे हैं, मैं जो मैं कह रहा हूं उचित है या अनुचित है या वो कहीं खराब लग गया। आखिर ज्योतिषी राजा थे तो उन्होंने पूछा, तो ज्योतिषी महाराज कहे कि नहीं महाराज, नहीं नारद जी, आप जो कहते हैं बिल्कुल सही है, अरे ब्रह्मचारी सन्यासी न आगे पाछ न पाछ न आगे नाथ न पाछे पगहा है, वो लोग फ्री लोग हैं, लेकिन हम घर गृहस्थियों क्या होगा, विभिन्न प्रकार का झंझट है घर गृहस्थी में, हम लोगों का क्या होगा। तब नारद जी घर गृहस्थी वालों के लिए समझाए हैं जो हम सब लोगों के लिए बहुत फायदामंद है, ध्यान से सुनिए क्या नारद जी कहते हैं। कहते हैं गृहेशु अवस्थित राजन क्रिया कुर्वन् यथोचितः वासुदेव अर्पण साक्षात उपआसित महामुनि। जो घर गृहस्थी में है वो घर गृहस्थी में रहे, गृहेशु अवस्थित राजन, हे राजन घर गृहस्थी में बने रहो, कोई बात नहीं, फैनेटिक मत हो जाओ, सबको साथ में लेकर चलो, सब भगवान के दिए हुए हैं। क्रिया कुर्वन् यथोचित, उचित क्रिया करो, अनुचित काम मत करो। देखिए ये द्वापर युग का बात था, आजकल तो सब कुछ अनुचित हो रहा है, उस समय अनुचित नहीं हो रहा था, फिर भी कहते हैं क्रिया कुर्वन् यथोचित, यानी घर गृहस्थी वालों का जो धर्म है, जो कर्तव्य है, उसको तुम पालन करो। और प्रथम कर्तव्य क्या है, वासुदेव अर्पण साक्षात, जो कुछ भी तुम्हारा है भगवान वासुदेव को तुम अर्पण करो। यद करोषि दशनासु यज्जुहोषि दास्यत यत् तपस्वसी कौन्तेय तत् कुरुष्वमदर्पणम्। सब कुछ भगवान वासुदेव को अर्पण करो। प्रश्न उठता है कि हम तो भगवान को देखे नहीं हैं, भगवान हैं कौन, कैसे हम उनको अर्पण करें, तो कहते हैं उसके लिए उपआसित महामुनि, उप मतलब नजदीक में, आसित मतलब बैठ करके, महामुनि मतलब साधु महात्मा, यानी सत्संग के द्वारा सीखो कि वासुदेव कौन हैं, कृष्ण कौन हैं और कैसे उनको अर्पण किया जाता है। अर्पण करना इतना आसान नहीं है, हम लोग सीख लेते हैं कि जो भी भोजन कर रहे हैं या धन दौलत जो कुछ भी है भोजन कर रहे हैं, तुलसी पत्र डाल करके भगवान को अर्पण कर दो, तदियम वस्तु गोविंदम तुम्हें, हे गोविंद आपका है आप ही ले लो, बहुत लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन अर्पण करने का मतलब कि एक बार दे दिया तो उसमें आसक्ति नहीं है, अब उनका हो गया, हम भगवान को प्रत्येक दिन भोग अर्पण कर रहे हैं और बाद में पुजारी दूसरे लोगों को बांट दिया और आपको कुछ भी नहीं मिला, तब अच्छा लगेगा? झगड़ा घर में मैंने आज कुकिंग किया, सब कम छोड़ करके आया, अब हम प्रसाद भी नहीं दिया। अरे अर्पण कर दिया, अब हो गया ना, दे दिया, खत्म कर दिया। लेकिन हम आसक्त रहते हैं, अर्पण करने का मतलब कि आसक्ति न हो। घर गृहस्थी, पुत्र परिवार, धन दौलत भगवान को अर्पण कर दिया, मतलब अब मेरा नहीं है, अब उनका है, वे जैसे रखना चाहे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हे कृष्ण, जैसे भी आप रखो, मुझे सर स्वीकार है। मानस देह गया जे किछु मोर, और पिलू तुआ पदे नंद किशोर। ये धन दौलत पुत्र परिवार सब आपका है, मैं आपको अर्पण करना है। अर्पण करने का मतलब आसक्ति खत्म हो जाना, यह है अर्पण का भाव। तो वासुदेव अर्पण, साक्षात भगवान वासुदेव को हम अर्पण करें, साक्षात वासुदेव को, और उसको सीखे कैसे? उपासित महामुनि। इतना आसानी से नहीं हो जाएगा, उसके लिए सत्संग बहुत जरूरी है, सत्संग बहुत जरूरी है। नारद जी आए कहते हैं, श्रवण भगवतो अभिक्षणस, नित्य प्रतिदिन अभिक्षणस, निरंतर हमें भगवान का कथा सुनना चाहिए। जहां भी रहें भगवान का कथा सुने, अभिक्षणस अवतार कथामृतम, भगवान के विभिन्न अवतारों का अमृतमय कथा नित्य निरंतर हमें सुनना चाहिए जहां भी रहें। श्रद्धाना श्रद्धानो यथा काल। फिर आए कहते हैं कि घर गृहस्थी में है तो घर गृहस्थी का अपना काम करते हुए यथा काल, ये नहीं कि सब घर गृहस्थी काम छोड़ करके आकर 24 आवर कथाएं सुनते रहें, तो घर में स्ट्राइक हो जाएगा, पत्नी दरवाजा बंद कर देगी, बच्चे गाली देना शुरू कर देंगे। तो नारद जी बड़े प्रैक्टिकल प्रचारक हैं, तो वे नहीं कह सब छोड़ करके आया मंदिर में, नहीं, बड़ा प्रैक्टिकली प्रचार कर रहे हैं, कर रहे हैं। श्रद्धानो यथा काल, श्रद्धा के साथ में कथा सुनो। आगे कहते हैं कि पहले कहते हैं श्रवण भगवतो अभिक्षण स, नित्य निरंतर, नित्य निरंतर कथा सुने। तो आजकल तो बहुत साधन नित्य निरंतर कथा सुनने का, वो टेप बजाया करो प्रभुपाद जी का दिन भर, क्या तकलीफ है, वो भी अपना काम भी करते रहो, टेप बजाते रहो। और नहीं तो मंदिर नहीं आ पाए तो घर गृहस्थी में रह करके भागवतम पढ़ो, कि प्रभुपाद जी का जो ग्रंथ है, प्रभुपाद जी कहते मैंने लिखा नहीं है, प्रभुपाद जी लिखे नहीं है, ये बोले हैं, ये प्रवचन है प्रभुपाद जी का पुस्तक। तो प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़ना जो है वो प्रभुपाद जी का प्रवचन सुनना है। तो प्रत्येक दिन प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़ो, प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहे हो। तो श्रवंत अभिष्ण स अवतार कथामृतम, और मंदिर में जब भी समय मिले आइए, भक्तों का संगति कीजिए। यथा काल उपशांत जनावृता, उपशांत साधु महात्माओं के बीच में, संतों के बीच में आवृत मतलब घिर करके, जैसे यहां सब लोग सुन रहे हैं, उपशांत जनावृत उनसे कथा सुने। और इस प्रकार से जब कथा सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे, डेली सुनना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया, सत्संग क्षणिक संग। जब नित्य प्रतिदिन कथा सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे तो क्षणिक संग छीण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या संग? किसका संग? आत्मा, देह का। हम अपने को देह मानते हैं और देह से बड़ा हमारा संबंध है। कथा सुनते रहेंगे, डेली सुनेंगे कि वी आर नॉट दिस बॉडी, हमें देह नहीं है, हम आत्मा है, भगवान के अंश हैं, हम डेली सुनते रहेंगे तो एक दिन आएगा कि विश्वास हो जाएगा। अभी हम लोगों को श्रद्धा है, विश्वास नहीं है। श्रद्धा और विश्वास में बहुत अंतर होता है। तो जब विश्वास न जाग जाए, जब विश्वास जाग जाएगा कि हम देह नहीं हैं, और कैसे विश्वास जागेगा? श्रद्धा के साथ, सद्धानो यथा कालो, श्रद्धा के साथ में हम प्रत्येक दिन कथा सुनेंगे तब विश्वास जागेगा। क्या विश्वास आएगा? कि हमें देह नहीं है, पहला तो यह। और देह से संबंधित जितने लोग हैं वे हमारे नहीं हैं, चाहे पत्नी हो, पुत्र हो, परिवार हो, घर द्वार हो, जो कुछ भी है। सत्संगई क्षणिक संग आत्म जाया आत्म आदिशु, देह देह संबंधी आदिशु, और जितने भी अहम ममेति मैं और मेरा जितने भी है, मैं मतलब अपने को हम देह मानते हैं और मेरा मतलब देह से संबंधित, तो अहम ममेति शब्द यहां पर आया हुआ है, मैं और मेरा। यह खत्म हो सकता है मात्र सत्संग के द्वारा, सत्संग के द्वारा। और जब यह खत्म हो जाएगा अहम ममेति, तब नारद जी कहते हैं मुच्यंत मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्न उत्थित। तो ऐसा लगेगा कि हम सपना देख रहे थे और सपना से उठ गए तो कुछ भी नहीं है। तो ये पुत्र परिवार घर द्वार ये सपना के समान है। हम जन्म लिए थे तो क्या पत्नी थी उस समय? होगी कहीं पर, उस समय आदमी तो नहीं थी। धन था, पुत्र थे, परिवार था, और मरेंगे साथ में जाएंगे? नहीं, ये बीच में आए हुए हैं। सपना भी तो बीच में दिखाई पड़ता है ना, जब सोते हैं तो वो वस्तु नहीं रहती है जिसको हम सपना में देखते हैं, और जगते हैं तो भी वो वस्तु नहीं रहती है, कल बीच में होता है। तो नीति कहता है कि इसका ओर ना हो छोर ना हो, बीच में दिखाई पड़े सत्य नहीं मानना चाहिए, तो ये सत्य नहीं है। और ये सब संभव है केवल सत्संग के द्वारा। हम सब भक्त लोग आए हैं विभिन्न देश प्रदेश से वृंदावन धाम में सत्संग करने के लिए, लेकिन सत्संग करने से जो आनंद मिलता है उस आनंद को लोगों में बांटना चाहिए। वैष्णव लोग स्वार्थी नहीं होते हैं। वैष्णव लोग क्या होते हैं? क्या होते हैं? परमार्थी होते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, आप लोग चल क्यों रहे हो? हरे कृष्णा, बैठ जाओ, प्रसाद है, काहे चिंता करते हो? क्या बात कर रहे थे? परमार्थी होते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भारत भूमिते हैलो मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। परोपकार करो, कुछ लोग रोटी कपड़ा मकान देते हैं, ये उपकार कहलाता है, और परोपकार मतलब कुछ ऐसा करो कि वो ऊपर चले जाए, यानी भगवान के धाम में चल जाए। परोपकार करो, भगवान के धाम में भेजो। और जिस दिन परोपकार की भावना आ जाएगी, हम सब लोग असली सत्संग का मजा, असली सत्संग का आनंद प्राप्त करेंगे। प्रचार में जो आनंद है अन्यत्र कहीं नहीं है, यही वैष्णवता है। नामे रति जीवे दया वैष्णव से वन, यहां छाड़ी धर्म नाय सुना सनातन। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हे सनातन, वैष्णवों के लिए तीन ही धर्म है, नाम में रति, जीवों पर दया, और वैष्णव का सेवा, यही वैष्णवता है। इसमें से एक है जीव दया। तो जाओ प्रचार करो। सबसे अच्छा प्रचार है कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण किया जाए। यदि समर महीना आ रहा है, सब लोग कार्तिक में व्रत लो। जैसे कार्तिक के लिए व्रत लिया ना, कोई बोला कि मैं दाढ़ी नहीं बनाऊंगा, हिपी बनकर एक महीना हिपी बना रहूंगा, जो भी है। कुछ लोग बोले मैं एक ही बार खाऊंगा, कुछ ना कुछ सब लोग व्रत लिया, अच्छा हुआ। कितने काम है, 16 माला 65 माला जब करूंगा, क्या जब करूंगा, तो व्रत लिया। असली व्रत होगा कि अभी आप लोग व्रत लो कि दिसंबर महीने में हम प्रभुपाद जी का ग्रंथ वितरण करेंगे, ये असली व्रत होगा, ये असली व्रत होगा। तो कार्तिक में आप लोग व्रत लो, यही है जीव दया। हम क्या दया कर सकते हैं? प्रभुपाद जी दया कर सकते हैं, यदि हम उनके ग्रंथों को दूसरों को दें तो सबसे बड़ी दया है। एक मुझे कथानक याद आ रही है ये जीव दया पर। एक दिन भगवान कृष्ण और अर्जुन मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकले थे, तो एक ब्राह्मण था बेचारा भिक्षा मांग रहा था, उसका दयनीय स्थिति देख करके अर्जुन को दया आ गई। तो अर्जुन वो सोने के गिन्नियों का पोटली निकाले और ब्राह्मण के हाथ में दे दिए। ब्राह्मण देखा बहुत खुश हुआ, उसका आंख बड़ा बड़ा हो गया है, और वो प्लानिंग करने लगा कि अरे इतना धन हमको मिल गया, इसी तो बहुत खुश हो जाएगा, पत्नी खुश हो जाएगी, उसे गहना खरीदूंगा, घर खरीदूंगा, बच्चों का शादी विवाह करूंगा, ये सोचते हुए बेचारा जा रहा था। तब तक से रास्ते में एक चोर मिल गया, और वो चोर क्या किया आप जानते हो? क्या करते हैं चोर? वो पोटली लेकर के भागते चला, सिर पर माथा मारा कि कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारा है, दुखी हो गया बेचारा। फिर दूसरे दिन अर्जुन और कृष्ण फिर मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, फिर देखो वही ब्राह्मण वहां बैठा हुआ है भिक्षा मांगने के लिए। तो अर्जुन को डाउट हो गया कि तो ये कैसा है, लालची है क्या? द्वापर का युग था, सोचे कि ऐसा तो हो नहीं सकता है, कुछ गड़बड़ है। तो अर्जुन ने पूछा, अरे कल ही तो मैं आपको वो पोटली दिया था सोने के गिनियों का, क्या हुआ? तो लगा रोने, कहा कि आप तो हमारे ऊपर बहुत दया किए थे, लेकिन मेरा ही दुर्भाग्य है, मैं पूरा बात बता दिया कैसे जा रहा था तो चोर आया और वो पोटली छीनकर चला गया। तो अर्जुन को दया आ गया, और इस बार उन्होंने एक हीरा दिया जो उससे कहीं महंगा था, एक था, तो कहा इसको ले जाओ। अभी लेकर गया, बेचारा थका हुआ था, और जा करके अपने पत्नी को बताया नहीं, बच्चों को बताया नहीं, एक मटकी था पुराना उसके अंदर रख दिया छिपा करके, और कहा सो गया, और सोचा कि जग करके फिर मैं प्लानिंग करूंगा। उस समय क्या हुआ, उसकी पत्नी पानी लाने जा रही थी, और क्या हुआ कि उसका जो घड़ा था पानी वाला ठोकर लगा गिर गड़ी वो टूट पड़ा। तो बेचारी आई, देखती अब कहां से पानी लाए, किसमें लाए, तो पुराना घड़ा पड़ा हुआ था, वो घड़ा उठाई पानी लाने के लिए चले गए। तो पुराना बहुत दिन का घड़ा पड़ा हुआ था, तो उसने सोचा पहले सफाई वफाई कर लें, पानी ले जाना है, तो नदी में ले जा करके खूब लाठी पुलाठी सफाई करने लगी। तब तक से जो हीरा था वो नदी में गिर पड़ा, अब पानी में लेकर गया गई। ब्राह्मण देवता जब जगे तो फटाफट गए, देखे पानी को बर्तन कहाँ है, तो कहा बर्तन वहां पर नहीं है। तो अपने पत्नी से पूछे कि यहां बर्तन था वो कहां चला गया, तो उसने पूरा वृतांत बताया। ब्राह्मण फिर सिर पर हाथ दे मारे कि हाय हाय, सही में मेरा दुर्भाग्य है, बहुत रोने लगे। तीसरे दिन भी ब्राह्मण गए भिक्षा मांगने के लिए, और फिर अर्जुन और कृष्ण मॉर्निंग वॉक पर, देखे सुबह सुबह फिर पंडित जी आ गए, ये बात क्या है? अर्जुन पूरा पूछे तो पूरा वृतांत बताए। भगवान ने कहा कि अर्जुन तू अब देख कर देख लिया ना, अब मैं कुछ दे रहा हूं। तो भगवान ने उसको दो आना दिया, दो आना समझते हो ना, दो पैसा दे दिया उसको। अर्जुन को आश्चर्य हो गया, भगवान कितने कंजूस हैं, द्वारकाधीश हैं, ये दो पैसा दे रहे हैं, दो पैसा क्या होगा है? तो भगवान से अर्जुन पूछ दिया, प्रभु आप क्या कर रहे हो, द्वारकाधीश नाम बदनाम हो जाएगा, दो पैसा दे रहे हो, बेचारा गरीब ब्राह्मण खा भी नहीं पाएगा। भगवान ने कहा अर्जुन चिंता मत करो, तुम अब इसके पीछे पीछे जाओ, देखो क्या करता है दो पैसे से। ब्राह्मण को भी थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन ब्राह्मण था भक्त, वो सोचा भगवान जो भी काम करते हैं अच्छा के लिए करते हैं, इसमें जरूर मेरा कुछ भलाई होगा जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो उसे भगवान पर विश्वास था, लेकिन दो पैसे से क्या होगा ये समझ नहीं पा रहा था। तो जा रहा था तो रास्ते में एक मलाह था मछली मारने वाला, तो मछली जाल में फंसाया था, एक मछली तड़फड़ा रही थी, ब्राह्मण जब देखा तड़पाते हुए मछली को आ गया, कहा कि दो पैसे में हमारा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन चलो इस मछली का मैं कुछ भलाई करना चाहता हूं। तो दो पैसा उस मलाह को दे दिया और कहा कि भैया ये मछली तू हमको दे दो। मलाह कहा, अरे पंडित जी अब मछली आपको क्या चाहिए? कहा तू उसका चिंता मत करो, ये हमको तुम मछली दे दो। पंडित जी ने दो पैसा दिया और मलाह ने वो मछली दे दिया। पंडित जी उस मछली को अपने कमंडलू के पानी में रख दिए और यह वही मछली थी जो हीरा गिर गया था अपने मुंह में निकल गई थी। उस अब पंडित जी के कमंडलू में अपना वो हीरा छोड़ दी और पंडित जाकर के उसको नदी में छोड़ दिए। तो जब हीरा मिल गया तो पंडित कहे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। पंडित जैसे कागर खुशी से जा रहे थे तो चोर वहीं से जा रहा था। चोर वहीं से जा रहा था, कहा लगता है पंडित हमको पहचान लिया, कह रहा मिल गया मिल गया मिल गया। कहीं ये राजा को कह देगा शिकायत मेरा तो मैं गया सूली पर चढ़ गया। वो पंडित वो चोर भागते भागते आया पंडित जी के पास, कहा क्षमा करना आपका जितना धन मैं रखा हूं सब यही है, आप लेकर जाओ फिर क्षमा कर देना, आप क्षमा करो ये धन ले लो। इस प्रकार से देकर के वो चला गया। अब इस कथाना का शिक्षा देखिए, इस कथा में एक शिक्षा है। शिक्षा यह है, दो तीन शिक्षाएं हैं। एक तो शिक्षा यह है कि अर्जुन जब दिए धन तो ब्राह्मण क्या सोच रहा था? माता जी लोग अपने विषय में सोच रहा था, अपने पत्नी के विषय में, बच्चों के विषय में, कि पत्नी के लिए नया गहना कर दूंगा, घर कर दूंगा, ये करूंगा, यही सोच रहा था ना। ये कहलाता है स्वार्थ। और जब भगवान ने दो आना दिया उसको तो उससे वो क्या किया? परमार्थ किया, दूसरे का सहायता किया। और दूसरे का सहायता किया तब क्या हुआ? कोई तकलीफ रहा उसको? कोई तकलीफ नहीं है। तो जो कृष्ण का भजन करेगा उसे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, कोई तकलीफ नहीं रहेगी। कृष्ण स्वयं कहते हैं योग क्षेम वहामी हम, मैं ला कर दूंगा। दूसरा शिक्षा है कि भगवान बड़े नाप तौल कर देते हैं, जितना हमारा श्रद्धा होगा विश्वास होगा उसके अनुसार ही देंगे। कभी कभी खूब लोग भजन करते हैं, खूब जप करते हैं, लेकिन तो दूसरा कहता है अरे तो खूब भजन कर रहे हैं फिर कंगाल कंगाल ही क्यों है? कृष्ण और लक्ष्मीपति हैं भगवान, तौल कर ये यथा माम प्रपदंते। इसको दो आना दिए कि इसकी उसकी श्रद्धा उतनी ही थी, लेकिन 100% श्रद्धा थी, 100% विश्वास था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? क्यों परोपकार किया। तो परोपकार बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम सब लोग वृंदावन आए हुए हैं, वृंदावन वह स्थली है जहां आकर हम बैटरी चार्ज करें, ठीक है ना। मोटर में जब बैटरी चार्ज होता है तो मोटर दौड़ने लगता है। अब यहां आकर के बैटरी चार्ज करें और चार्ज करने के बाद जाएं और प्रचार करें, प्रचार करें, परोपकार करें। भारत भूमिते हैल मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, परोपकार करो। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पढ़ायो जानी रे। संसार में सब लोग दुखी हैं, जाइए उनके पास और उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस दीजिए। जो लोग स्वार्थी हैं वे लोग कभी सुखी नहीं रह सकते हैं, चाहे वृंदावन में ही क्यों न रहें। स्वार्थ से कोई सुखी नहीं रह सकता है। प्रहलाद जी उन लोगों को कंडेम करते हैं जो केवल अपना हित देखते हैं, जन कल्याण के प्रति जो लोग नहीं लगे हुए हैं। प्रहलाद कहते हैं प्रायेण देव मुनय स्वयुक्त कामा मौनम चरंति विजने न परार्थ निष्ठा। जिसमें परार्थ निष्ठा नहीं है, जन कल्याण की भावना नहीं है, जो अपने आप में लगा हुआ है, जो अपने लिए सब कुछ करना चाहता है, प्रहलाद जी को कंडेम करते हैं, कहते न एतान विहाय कृपणा विमुक्त एको, मैं इन लोगों को जो संसार में दुख भोग रहे हैं इन लोगों को छोड़ करके मैं अकेला आपके शरण में नहीं आना चाहता हूं, मैं इनको अपने साथ लाना चाहता हूं आपके शरण में, यही है वैष्णवों का धर्म, सबको साथ ले चलो, कहां पर, बैक होम, बैक टू गॉड हेड, सब हमारे भाई हैं, सब बंधु हैं, सब भगवान के अंश हैं, भगवान कहते हैं मामे अंश जीव लोक जीव भूत सनातन मनस स्थान इंद्रियाणी प्रकृति आदि कर सती, ये सब मेरे ही अंश हैं, प्रभुपाद कहते हैं रिक्लेम एवरीबॉडी बैक होम बैक टू गॉड हेड, रिक्लेम करो सबको ले चलो भगवत धाम, और तब हम लोग सुखी रहेंगे और सब लोग सुखी रहेंगे, क्योंकि यदि ऐसा कार्य करेंगे तो भगवान खुश रहेंगे, भगवान का यही मिशन है, सब लोगों को भगवान अपने धाम बुलाते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्टाम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, जन कल्याण के लिए भगवान आते हैं, उन्हें इस संसार में क्या प्रयोजन है, लेकिन हम लोगों को ले जाने के लिए, और हम लोग उनके मिशन में भाग लें, लोगों को भगवत धाम भेजें, यही असली धर्म है, नहीं तो इस संसार में सब लोग पुरंजन बन करके दुखी हैं, दुखी रहेंगे, यही तो भक्त और अभक्त में अंतर है, भक्त दूसरों के दुख से दुखी होता है और दूसरों के सुख से सुखी होता है, हम सब लोग टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को कि हम कितना भक्त बने हुए हैं, हमारे बगल वाला जो दुखी है उसके दुख से मैं सुखी हो रहा हूं तो इसका मतलब भगत नहीं है, यदि हमारे बगल वाला दुखी है उसके दुख से मैं दुखी हूं तब हमें भक्ति देवी प्रवेश कर रही, भक्ति देवी हमारे गृह में प्रवेश कर रही आ रही है, तो टेस्ट स्वयं हम कर सकते हैं अपने आप को, तो जन कल्याण ही एकमात्र वैष्णवों का धर्म है, एकमात्र वैष्णवों का कर्तव्य है, नहीं तो संसार में सब लोग दुखी हैं, तो इस श्लोक को समराइज करने में तया मैं चार वस्तुओं पर प्रकाश डाला, एक को मनुष्य जन्म का धर्म क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है, वह यह है कि मृत्यु के समय नारायण का स्मृति हो, दूसरा बात था कि संसारियों की परिस्थिति क्या है, संसारियों की परिस्थिति पुरंजन की परिस्थिति है, तीसरा बात था कि इस परिस्थिति से हम परे कैसे हों, और उसके लिए नारद जी और युधिष्ठिर महाराज का सम्मान बताया हुआ है सत्संग के द्वारा, और सत्संग के बाद जब शुद्धि होती है तब हमें क्या करना चाहिए, और वह है परोपकार, सब लोग तैयार हैं परोपकार करने के लिए, पुस्तक वितरण करने के लिए, धन्यवाद, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।